ஓம் சாந்தி. சப்கோ அச்சா லக் ரஹா ஹை? டண்டி லக் ரஹி ஹை நா? கி யோக் லக் ரஹா ஹை? ठंडी में भी सिकुड़ते हैं और योग में भी बुद्धि को हम सब तरफ से समेट लेते हैं, तो योग करना भी अच्छा लगता है ना? आराम से बैठे रहते हैं। बाबा की पालना तो हम सबने ली है कि नहीं ली? हाँ, तो हम ऐसे तो नहीं कहेंगे कि बाबा की पालना नहीं ली। साकार रूप में नहीं देखा, पर बुद्धि के नेत्र से हम सब ने बाबा को अच्छी तरह पहचाना है। सिर्फ देखा नहीं है, परंतु पहचाना है, जाना है, पहचाना है, और उनकी पूरी शिक्षाएं हम सब ने प्राप्त की है। इसलिए बाबा तो हमारे सामने बिल्कुल स्पष्ट है। हमें तो रोज शिव पिता का मूल सत्य ज्ञान और ब्रह्मा बाबा ने उनके ऊपर जो चिंतन किया है, वो चिंतन हम रोज सुनते हैं साकार मुरली के रूप में। ब्रह्मा बाबा ने इतना सुंदर चिंतन किया, आज आप सोचिए कि अगर मुरली ना हो तो हमको ठीक लगेगा? क्या पुरुषार्थ करें, है ना? बाबा का चिंतन क्या था, बाबा का कहना क्या था, बाबा का करना क्या था, वो रोज मुरली में हम देखते हैं। बाबा तो 60 साल की आयु पर ये नया यज्ञ शुरू किया, और उस आयु में जब लोग रिटायर्ड होते हैं तब बाबा ने नया कार्य शुरू किया, और शुरू के 14 साल एक ब्रह्मा बाबा ही उन सब के सामने थे। ब्रह्मा बाबा के सामने तो कोई एग्जाम्पल नहीं था, है ना? वो नंबर वन आत्मा, अपने निश्चय, अपनी लगन, अपनी समर्पणता की शक्ति से शिव बाबा के ज्ञान को बाबा ने कितना समझा खुद और धारण किया, और अपने घर में बाबा ने सत्संग शुरू कर दिया। ये कितनी बड़ी शक्ति कहेंगे। आज हमें मधुबन आना हो, सेवा में आना हो, भट्टी में आना हो, तो भी एक दोस्त से पूछते हैं, आप चलेगी? तो मैं चलती हूं, है ना? हम कितने आधारित है ना? अपना आसपास समय है और हमारे दूसरे साथियों के पास समय नहीं है, वो ना कहेंगे तो हम भी कहेंगे ठीक है, फिर मैं भी नहीं जाती, है ना? इतनी अनमोल तक, वो भी हम एक दो के आधार पर लेते हैं, जबकि ब्रह्मा बाबा का तो पता है ना, बाबा तो हैदराबाद से निकलकर कलकत्ता बिजनेस के लिए जा रहे थे, और बीच में वाराणसी में अपने मित्र के यहां रुके, और वहां ही अर्ली मॉर्निंग बाबा गार्डन में बैठे थे, तब बाबा को ये साक्षात्कार हुए। पढ़ी है ना जीवन कहानी, महाविनाश का साक्षात्कार, ज्योति बिंदु का साक्षात्कार, नई दुनिया की स्थापना का साक्षात्कार। अब साक्षात्कार में तो ज्यादा कुछ थोड़ी होता है, उसकी समझानी कोई थोड़ी देता है, पर बाबा ने इस दिव्य साक्षात्कार और शिव बाबा के संकेत को इतनी अच्छी तरह और जिगरी समझ लिया कि बाबा ने कलकत्ता जाकर अपने बिजनेस पार्टनर को कहा कि बस मुझे तो राजाई मिल गई है, अब मुझे ये धंधा नहीं करना है, मेरा जो पार्टनर के हिसाब से जो हिसाब बनता हो वो आप मुझे दे दो। ऐसा कोई फैसला लेगा तो कितनी बाबा की भक्ति से ही लगन, और पूरा बिजनेस तो बाबा की पर्सनालिटी के कारण चलता था। वो पार्टनर तो एकदम शॉक हो गया कि ये क्या आप कह रहे। फिर भी बाबा ने कहा नहीं, तुम जो मेरा हिस्सा बनता है वो दे दो, और बाबा वो हिस्सा लेकर हैदराबाद आज चले आए। वहां भी उनके चाचा बीमार थे, मैंने बिल्कुल अंतिम क्षणों में थे, उस समय भी बाबा को साक्षात्कार हुआ और बाबा ने घर में ही सत्संग शुरू कर दिया। पूरे परिवार सहित स्वाहा हुए, पूरी चल अचल संपत्ति के साथ बाबा समर्पित हो गए, और इतना बड़ा प्रभावी विलक्षण बुद्धि वाले प्रसिद्ध जवाहरी, और शिव बाबा ने उसको क्या आदेश दिया, चलो भाई व्यक्ति पूरी प्रॉपर्टी सहित स्वाहा भी हो जाए और संस्था बना के चलाएं, पर शिव बाबा ने तो आदेश क्या दिया कि माताओं और बहनों के द्वारा तुम्हें करना। वो जमाना जो पूरा पुरुष प्रधान जमाना, स्त्रियां तो चार दीवारों के बीच थी, उनको पढ़ने भी नहीं देते थे, और ऐसी माताओं और बहनों के आगे प्रॉपर्टी समर्पित करना और उनके द्वारा कराना कितनी बड़ी बात है ना। अपने पुरुषपन का ईगो भी बाबा ने छोड़ा। पढ़ा होगा ना आप सब ने बाबा का निश्चय पत्र पढ़ा है, देखना कभी, पहले बहुत बार आया है, व्हाट्सएप पर भी डाला था कि मैं अपना सर्वस्व ओम मंडली माता को समर्पित कर दे। उस समय तो ओम मंडली कहते थे ना बाबा के यज्ञ को, जिसमें मम्मा का नाम था, दादी प्रकाशमणि का नाम, मिट्ठू दादी का नाम, फिर शांतामणि दादी का नाम, कितनी छोटी छोटी बहन, मम्मा 19 साल की शायद और बड़ी दादी 16 साल की, ऐसी युवा बहनों के आगे सब कुछ समर्पित कर, परिवार को समर्पित कर। तो ऐसे बाबा को तो रोज मुरली में हम देखते ही हैं। पता चलता है इससे कि बाबा की क्या लगन थी, संपूर्ण पावन बनना है, संपूर्ण सतो प्रधान बनना है, पूरा वर्षा लेना है, माना कितनी लगन। हम तो कभी कई बार थोड़े में ही राजी हो जाते, या कहीं बुद्धि से ही, अपनी बुद्धि से ही सोच लेते हैं कि बस हम इतना ही कर सकते हैं। कारण क्या बता देंगे, हम ग्रस्त में रहते, तो ब्रह्मा बाबा क्या थे, ग्रस्त ही तो थे। ब्रह्मा बाबा नंबर वन बन सकते हैं तो हम सब भी बन सकते हैं। तो लक्ष्य क्या है, आप सभी ने क्या लक्ष्य बनाया, पुरुषार्थ तो सभी कर रहे हैं ना, भगवान मिले हैं, भगवान का सत्य ज्ञान मिला है और आदि पिता ब्रह्मा बाबा मिले हैं। तो हमारा लक्ष्य क्या होना चाहिए? जो थोड़े में खुश है वो हाथ ऊपर कर। देखो हाथ कोई नहीं ऊपर कर रहे, पूरी प्राप्ति करनी है, ये किस किस का लक्ष्य है? देखो याद रखना, वही मेडिटेशन हॉल में बैठे थे, बाबा मम्मा के सामने हाथ उठाया था, हाँ, रोज अपने आप को याद कराना कि हम पूरी प्राप्ति करना चाहते। छोटी सी चीज में भी कमी पेशी हो तो हर एक का मूड बदल जाता है ना, हाँ? कि सबको सौगात मिली, मेरे को नहीं मिली। छोटी सी चीज, हाँ? दीदी ने टोली दी पर मेरे को तो एकदम छोटी सी दी। इसमें भी नाराज हो जाते है ना। तो देखो, स्थूल चीजों की प्राप्ति में, लौकिक में भी कम मिले वर्षा तो लड़ाई करते हैं, केस करते हैं। छोटी स्थूल चीजों में भी कम हो तो नहीं, तो फिर अलौकिक प्राप्तियां करने में हमारा लक्ष्य कमजोर क्यों हो? इसलिए रोज जब आप बाबा के सामने बैठते हैं, क्लास में बैठते हैं, तो अपना लक्ष्य पक्का कर लो कि ये ज्ञान और योग का पुरुषार्थ मैं किस लिए कर रही, कौन आया है, वो क्या दे रहा है, क्या प्राप्ति होनी है, बल्कि हो रही है। आज हमारा जीवन इतना अच्छा बन गया किसके कारण? बाबा के कारण। चलो भविष्य तो निश्चित है ही, क्योंकि जिसका वर्तमान श्रेष्ठ है उनका भविष्य भी श्रेष्ठ होना ही है। हमें कोई ज्योतिषी के पास हाथ दिखाने की जरूरत नहीं कि भाई देखो मेरे नसीब में क्या लिखा है, वो चिंता, वो प्रश्न है ही नहीं हमारे, क्योंकि ये तो लॉ है, साइंस है कि जिसका वर्तमान श्रेष्ठ है उनको भविष्य श्रेष्ठ प्राप्तियां होनी ही है। बाबा ने हमें कितने फैशन से, व्यसन से, पिक्चरों, होटेलों, अंधश्रद्धा, गलत रस्मों से हमारे जीवन को मुक्त कर दिया, और उसके कारण कितनी चिंताओं और फिकरातों से हम फ्री हो गए। तो प्राप्ति होनी नहीं है, हो रही है ऑलरेडी, और सदा प्राप्ति ही प्राप्ति होनी, ये निश्चय होगा तो लक्ष्य ऊंचा बनेगा। बचपन में प्राइमरी स्कूल में पढ़ते थे, मुझे याद है हम एक दो को कहते थे कि भगवान अगर आपको कहे कि तुम इतनी मिर्ची खा लेगी, तो हम कहते थे हाँ। इतना घड़ा भर के पानी पी लेंगी, तो हम कहते थे हाँ। शेर आ जाए तो नहीं डरेगी, हम कहते थे नहीं। और वो ऐसे करते थे और हमारी आंख ऐसे हो जाती थी, देखो डर गए। तो मैं कहती थी, सोचती हूँ कि भगवान कौन है, क्या है, कुछ जानते भी नहीं थे, पर एक भावना, श्रद्धा, जन्म जन्मांतर से, माँ बाप से, परिवार से जो मिलती है, तो असंभव कार्य भी हम कहते थे हाँ। अब जब सन्मुख भगवान आए हैं तो हम क्या कर रहे हैं, क्या कह रहे हैं, अब हम क्या कह रहे हैं भगवान का? वो जो कहे वो पुरुषार्थ करने तैयार है, है? सोच लो अंदर, हाँ, कितनी बातों में हम बाबा को ना करते हैं या हम कहते नहीं हो सकता है, हा? बाबा तो ऐसा कुछ, बच्चे हम आपस में कहते थे ऐसा तो नहीं कहते हैं, बाबा तो वास्तविक बात करते हैं, हम कर सकते हैं ऐसी बात करते हैं। भगवान कहे और हम ना कर सके ऐसी बात भगवान क्यों कहेगा, ऐसी बात भगवान क्यों कहेगा? भगवान को पता है कलयुग अंत का समय है, गृहस्थी है, नौकरी धंधे है, परिवार है, उनको पता है ना सब कुछ, इसलिए कर सकते हैं, इसलिए ही बाबा कहते हैं। पर हम बाबा में विश्वास रख के दृढ़ता नहीं बना के रखते हैं और वो पुरुषार्थ करते नहीं। हम अपनी ही जो सीमित बुद्धि है या जो सिचुएशन के प्रभाव वाली बुद्धि है उसी के आधार पर हम ही निर्णय करते हैं कि बाबा कहते हैं पर हम कैसे करेंगे। परंतु अगर ये निश्चय बुद्धि में रहे कि साक्षात बाप आकर हमें कह रहा है ना, ये कोई गुरु महात्मा पंडित नहीं कह रहे, कोई हम भाई बहने आपस में एक दो को नहीं पढ़ा रहे, हमें तो खुद शिव बाबा और ब्रह्मा बाबा कह रहे। अगर ये निश्चय है, बाबा कहते हैं ना भगवान वाच, फिर सोचने की भी जरूरत नहीं, आंख मूंद के उसके पीछे हमें चलना है। लौकिक दुनिया में सामान्य मनुष्य स्त्री पुरुष आप देखते हैं ना, प्यार में अंधे होके क्या क्या कर बैठते, माँ बाप भाई बहन कुछ भी याद नहीं रहता, उसका जो फ्रेंड है या उसका जो प्रेमी है वो जो कहेगा उसके पीछे छोड़ के निकल पड़ते। तो हम सोचे ना कि हमें तो कौन कह रहा है ना, साक्षात भगवान हमें कह रहा है ना। मुरली क्या है, बाबा की आज्ञा है, बाबा का चिंतन है, बाबा का कहना है। हमारे सामने कोई अनेक बातें नहीं है, बस एक भगवान वाच मुरलियां हैं। तो हमारी लगन हो कि जो बाबा कहते हैं वो मुझे करना है, और बाबा हमारी ही उन्नति के लिए कह रहा है, हमारे ही कल्याण के लिए कह रहा है। तो लॉकडाउन के दिनों में पुरुषार्थ सही रहा कि आलस किया, हाँ, एक्यूरेट रहा, हाँ, भाई घर में ऑनलाइन मुरली सुननी है तो ऐसे ही देरी से उठ के बैठ गए, हाँ, नहीं, ज्यादा हुआ, हाँ, इसलिए ये खुद की लगन, खुद की दृढ़ता, खुद का उमंग उत्साह बहुत जरूरी है हमारी अपनी स्थिति बनाने के लिए। क्योंकि संगम युग में ज्ञान, योग, धारणा, सेवा का जो भी पुरुषार्थ हम करते हैं उसका रिजल्ट हमारी स्थिति बननी चाहिए, हमारी आध्यात्मिक अवस्था बननी चाहिए। क्योंकि अल्टीमेट तो अवस्था के साथ हम जाएंगे ना सतयुग। जिस स्थिति से संगम युग एंड करेंगे उसी स्थिति से आप सतयुग शुरू करें। तो ये समय है संगम युग का, कल्याणकारी समय। हम बाबा से जितना अपने आप में भरना चाहें हम भर सकते हैं। भगवान निराकार है, वो सूक्ष्म चीजें देता है, स्थूल चीजें नहीं देता। पर वो ऐसा ज्ञान गुण शक्ति का खजाना देते हैं जिससे जन्म जन्मांतर हम इतने श्रेष्ठ बन जाते, जो हमारे कर्मों के सौभाग्य से ही हमें प्राप्तियां ही प्राप्ति होती। न मांगना पड़ेगा न कहना पड़ेगा, हमारे मन वचन कर्म इतने श्रेष्ठ बन जाते हैं। बाबा कहते हैं एक जन्म का पुरुषार्थ पूरे कल्प की कमाई। हम तो वहां मेहनत कर रहे थे दुनिया में, लौकिक में, जिसमें कोई प्राप्ति ही नहीं थी। जब सही ज्ञान नहीं तो जीवन सही कैसे बने, है ना? उन मित्र संबंधियों के लिए कितना समय मन आपने दिया होगा, तन लगाया हो। और अनेकानेक मित्र संबंधियों के बीच होते हुए भी आज इतना देह अभिमान है, इतना स्वार्थ है, मतलब है, और आत्माओं की शक्ति तो लिमिटेड है ना। जो इंसान महसूस करता कि कहने के लिए तो बहुत मित्र संबंधी हैं, परंतु मेरा अपना कोई नहीं। व्यक्ति अपने आप को अकेला महसूस करता है ना अनुभव, लौकिक जीवन में कदम कदम पर ऐसे अनुभव होते। उस समय भी दुखी होते थे, कोई साथ सहयोग नहीं देता था तो किसको याद करते थे? किसको याद करते? भगवान को ही याद करते थे ना, कि हे भगवान आप ही मेरे आधार है। तो हम ज्ञानी आत्माओं को सदा किसको याद करना चाहिए? हमें कभी ऐसा एहसास नहीं होना चाहिए कि मेरा कोई नहीं। कई भाई बहनें माताएं कहने के लिए कहेगी कि मेरा तो एक बाबा है, दूसरा कोई नहीं। वो रोते रोते कहते मेरा तो कोई नहीं है, एक बाबा ही है, करके दुखी होते। अब ये बात दुखी होके बोलने की है? हमें भगवान मिला है, हमारे को उनका सही परिचय है और हम उनसे ही योग लगाते हैं। भगवान ही मेरा सब कुछ, वो ही मेरा साथी भी है और जीवन का सारथी भी है ना। सर्व संबंध बाबा से हैं, तो कोई अगर साथ नहीं देता है तो दुखी क्यों हो जाते? याद रखो ना, सर्वशक्तिमान मेरे साथ, सुखदाता मेरे साथ, प्यार का सागर मेरे साथ, सदा पावन बाबा मेरे साथ। तो हमें अफसोस नहीं होगा, क्योंकि फिर हमें औरों से अपेक्षा रखने की जरूरत ही नहीं है। अपेक्षा रखते हैं उन्हों से और मदद नहीं मिलती है तो कहते हो ना कोई काम के नहीं है। हाँ, पर हम तो बाबा के बच्चे, कोई दे या ना दे, हमें तो सबको देना है, शुभ भावना रखनी है, जो हो सकता है हमें मदद करनी है, क्योंकि हम तो दाता के बच्चे हैं। अवढर दानी कहते हैं ना, भगवान जब देता है तो कैसा देता है, तो वो कौन सा समय है? तो क्यों भूल जाते हैं हम कि क्या करेंगे, कोई नहीं है। यही भगवान जब देता है तो कब देता है? संगम युग में देता है, संगम युग में देता है, क्योंकि ये समय है जब वो देने आया। बस बाबा कहते हैं, मैं तेरा, तुम बच्चे मेरे, ये दिल का सौदा क्यों नहीं हम बाबा से, है ना? अगर एक बच्चा पैदा होते वारिस बन जाता है आपकी प्रॉपर्टी का, किया क्या उसने? रिलेशन। तो अगर हम दिल से भगवान के सच्चे बच्चे बनते हैं और हर हाल में, हर परिस्थिति में, बस बाबा मेरे साथ है, बाबा मेरे साथ है, ये अगर हम स्मृति रखते हैं और बाबा के सपूत बच्चे बनते हैं, तो जरूर प्राप्ति। बाबा तो दे ही रहा है, है ना? ऐसा नहीं है कि हम कहते हैं तो बाबा दया करते हैं, कृपा करते हैं। वो तो है ही दयालु, है ही कृपालु, है ही सदा दाता। वो तो ऑलरेडी दे ही रहा है। पर अभी दो दिन पहले भी मुरली में था ना, कि तुम याद करेंगे, याद से याद मिलती है, प्यार से प्यार मिलता है। ये तो कायदा है ना, ये तो कायदा है। तो हम जितना बाबा को याद करते हैं, प्यार करते हैं, और सदा उनको, क्योंकि ये नेचुरल मेथड है, याद हमें आती ही रहे, उसकी विधि है कि उनको अपना जीवन साथी बना दो। दुनिया में लाखों लोग हैं, पर आपको कौन याद आते, कौन याद आते? वही याद आते हैं ना जिनसे हमारे रिलेशन है, कनेक्शन है, वही याद आते हैं। सारी दुनिया की याद थोड़ी आती, पर जिस प्रैक्टिकल हम जिसके साथ रहते हैं, जीते हैं, खाते हैं, काम करते हैं, वही रिलेशन कनेक्शन वाले ही याद आते हैं। और उसमें भी अति याद किसकी आती है? जिसको, जिसके साथ प्यार है आपका, जिसके साथ आपका प्यार है, उसके लिए हम कहते हैं कि मैं भूलना चाहूं तो भी नहीं भूल सकती। तो क्या करना है? हमें भगवान से प्यार करना है। ना होता हो तो भी करो, समझाओ अपने आप को कि उसके याद और प्यार में ही मेरा कल्याण। जब हमें ज्ञान मिला तो हमने यही विचारा है। वैसे तो ज्ञान काल से ही हमको ये सब नफरत थी, शादीवादी। हम सोचते थे शादी तो करना ही नहीं है और लौकिक घर में भी नहीं रहना है। ये भी था कि मुझे कुछ और करना है, और करना है, और बाबा मिले। तो बुद्धि में यही बात चिंतन में आया कि कोई भी देहधारी सदा और संपूर्ण रूप से मेरा हो सकता है। सोचो, क्योंकि हर कोई जीवन मनुष्य कहते हैं ना सामाजिक प्राणी, उसमें भावनाएं हैं, संवेदनाएं हैं, प्यार है, इसलिए कहते हैं ना कि मनुष्य अकेला नहीं रह सकता। तो युवा किशोर आयु में आते आते ही व्यक्ति मन से किसी को खोजने लगता है, कोई मेरा हो, कोई मेरा हो। पर आप सोचिए, कोई भी देहधारी सदा आपका हो सकता है? नहीं, क्योंकि वो जन्म मरण के चक्कर में है, शरीर के बंधन में है। जो शरीर धारण करता है वो निश्चित ही शरीर छोड़ता भी है। व्यक्ति कहीं दूर चला जाता है, संबंध टूट जाते हैं, शरीर छोड़ देते हैं, कोई सदा अपना नहीं हो सकता। आया है सो जाएगा, राजा रंक फकीर, सब जाने वाला, देवता बनो तो भी जाना है। इसलिए केवल बाबा ही सदा हमारा साथी हो सकता। हर क्षण हर स्थान देहधारी हमारा नहीं, हमारे साथ हो सकता है? नहीं, उनकी अपनी भी पर्सनल लाइफ है, कभी नहाने जाएगा, कभी घूमने जाएगा, कभी खाना खाने जाएगा। और ना कोई देहधारी संपूर्ण रूप से हमारा हो सकता, क्योंकि वो थोड़ा माँ बाप का होगा, थोड़ा फ्रेंड्स का होगा, थोड़ा और किसका होगा, संपूर्ण वो नहीं हो सकता है। तो हम उनसे क्यों आश रखें? इसलिए तो बाबा हमें कहते हैं ना कि देह सहित देह के सर्व धर्म संबंध छोड़ो, भूलो। कई बार हम सोचते हैं ना कि मेरे माँ बाप तो बहुत सुख देने वाला है, मेरा परिवार तो बहुत अच्छा है, पता नहीं क्यों बाबा कहते हैं इन सबको भूलो। परंतु भगवान कह रहे हैं, तो आप ही सोचिए ना कि अगर देह संबंधों में संपूर्ण सुख होता तो भगवान क्यों कहते छोड़ो? भगवान तो बुद्धिमानों का बुद्धिमान है ना, वो तो नॉलेजफुल है ना, वो क्यों कहता है? जरूर ये सत्य है, ये सत्य है। तो ये बातें बुद्धि में लाओ। तो देहधारी में बुद्धि जाएगी नहीं और बाबा से लगन लगी रहे। कई बार हम सोचते हैं कि निराकार कैसे साथ हो सकता है? कई भाई बहन कहते हैं प्रैक्टिकल तो कोई चाहिए ना, प्रैक्टिकल तो जो है वो मिले हुए ही है ना। अगर आपको उनसे साथ सहयोग चाहिए तो अच्छा व्यवहार करो, वो तो प्रैक्टिकल करना ही है ना, अच्छा व्यवहार करो तो अपने आप हमें सबका सहयोग मिलेगा। पर निराकार सदा साथी हो सके तो उनको याद करो। जहां याद करो वहां बाबा हमारे साथ है। जिस क्षण आप याद करते हैं बाबा हमारे साथ है। बिना कहे तो हम भी किसी के मदद में नहीं जाते, तो हमें उनको याद करना है। तो आप में हिम्मत बनी रही, आप हलचल में नहीं आएंगे, आपका मन बुद्धि स्थिर रहेंगे, अपने आप आपको टच होगा कि अब मुझे इस परिस्थिति में क्या करना चाहिए। पर बाबा की शिक्षाएं जीवन में धारण हुई होगी, बाबा की याद होंगी, तो बुद्धि आपको सही रास्ता दिखाए। जिस किसी से मदद मांगेंगे आपकी वो दिव्य धारणाएं उनको प्रभावित करेगी और आपको मदद मिले। इसलिए हम भाग्यशाली हैं, हमने जाना है, पहचाना है कि ये संगम का समय है। साक्षात भगवान सृष्टि पर आए हैं, ब्रह्मा द्वारा हमें सब कुछ गाइड कर रहे हैं। तो हर परिस्थिति में परिस्थितियां तो आएगी, है ना? भगवान साथी है तो मुसीबतें क्यों आती है, ऐसे भी सोचते हैं भाई बहने। पर पता है ना कि मुसीबतें तो किस कारण से आती है, हैं? हमारे अपने कर्मिक अकाउंट से आती है ना। मेरे सामने जो मुसीबत आई है वो और किसी के कारण थोड़ी आती। कहीं ऐसे सोचते हैं उसके कारण ये प्रॉब्लम आया, यही मेरे लिए विघ्न रूप है। पर सत्य ये है कि हमारे अपने हिसाब किताब ऐसे हैं, जाने अनजाने जो गलत काम किए हैं तो वो तो मिथ्या नहीं होंगे ना, वो हिसाब किताब तो हमें चुकाने ही है। इसलिए परिस्थितियां तो आएगी, पर स्मृति में है कि बाबा मुझे प्यार करते हैं, बाबा मेरे कल्याणकारी है, बाबा मेरी पालना करते हैं, तो आपको सहज लगेगा। भाई बच्चा बीमार पड़ा है, बीमारी की भोगना तो बच्चे को भोगनी पड़ेगी। आप प्यार करेंगे, साथ रहेंगे, केयर करेंगे, पर जो दर्द है वो तो खुद को ही भोगना होता है, क्योंकि हमने वो हिसाब बनाया है। भूल हम करें, पाप हम करें और बाबा माफ कर दें, हाँ, फिर तो सबका माफ करे, सारे विश्व का माफ करे, फिर तो कर्म का कोई सिद्धांत नहीं रहेगा, चक्र कैसे चलेगा? कुछ तो प्रिंसिपल्स होते हैं ना। इसलिए साथी बनाना किसको कहा जाता है? अनुभव है ना सबको, जिसको भी आप लाइफ पार्टनर बनाते हैं, जीवन साथी बनाते हैं, तो वो सिर्फ हवा में थोड़ी होता है, प्रैक्टिकल होता है। प्रैक्टिकल निभाना है ना, सुख दुख में एक दो के मददगार बनना है, तो कहेंगे कि हमने साथी बनाए। और जब साथी बनाते हैं माताओं और गृहस्थी भाई बहनों का अनुभव है कि एक दो से कितना एडजस्ट करना होता है, एक दो से एडजस्ट करना होता है। लक्ष्य रखते हैं ना कि भाई संबंध निभेगा ही तब जब एक दो के अनुकूल होके चले। भाई जो आपको पसंद हो वही हम कपड़े पहनेंगे, वो वैसा ही ड्रेसअप होंगे, आपको पसंद हो वो ही रिलेशंस हम रखेंगे। कहते हैं ना, जो तुमको हो पसंद वो ही बात करें, बात भी उनको पसंद हो वो करेंगे। लौकिक दुनिया के ये हमें तो इतना सुख देने वाला बाबा मिला है, तो जो बाबा को पसंद वो ही मुझे करना है। उनको क्या पसंद है पता है ना सबको, रोज मुरली में बातें आती, तो मुझे याद करो और किसी को नहीं। जो नियम मर्यादा वाले कपड़े हैं वो उनको पसंद है तो मुझे वही पहनने। जो सात्विक भोजन बाबा कहता है वो ही मुझे खाना। टाइम वेस्ट नहीं करो, मनसा संकल्प वेस्ट ना करो, तो हमें वही करना है ना। वही प्यार की निशानी है, वही साथ संबंध की निशानी। तो देखो अगर आपने सचमुच साथी बनाया है तो ये रिजल्ट है आपके जीवन में। तो अपने आप बाबा बंधा हुआ है, हर समय हमें मदद करनी। अच्छा, हम सब श्रीमत पर चलते हैं, नियम मर्यादा में चलते हैं, वाणी वेस्ट नहीं करते हैं, मनसा भी वेस्ट नहीं करते हैं, है ना। जो बाबा के पक्के सच्चे परफेक्ट ब्राह्मण बच्चे हैं उनको तो मुश्किल लगता ही नहीं है, क्योंकि उनका तो अपना लक्ष्य बन ही गया है कि दुनिया में रहते कैसे चलना है। बाबा क्या कहते हैं, ग्रस्त में रहते हुए कैसे चलो, कमल फूल समान, न्यारा और प्यारा होकर चलो। हम आधा वाक्य अंडरलाइन करते हैं कि देखो बाबा ने कहा है ना ग्रस्त व्यवहार में रहना, पर कमल फूल समान रहना है ये बात का भी तो ध्यान रखना है ना। बाबा का परिचय दो तो सेवा करनी है, ज्ञान दान करना है, बाबा के रचे हुए यज्ञ को चलाना है, संभालना है, सेवा करें तो हम वो भी ध्यान में रखते हैं ना कि हमें तन से मन से धन से हर रीति से बाबा के मददगार बनना है। ये कोई हम निमित बहनों को या समर्पित भाई बहनों को थोड़ी करते हैं, हम जो कुछ कर रहे हैं वो किसको मदद कर रहे हैं, बल्कि हम क्या मदद कर सकते हैं, वो तो हमें ही हजार गुना दे रहा है। रिटर्न मिलना ही है। आप अपने साथी के साथ रहते हैं तो आप बाहर जाएंगे तो बताएंगे ना कि भी मैं वहां जा रहा हूं, आता हूं, बाहर से आके समाचार देते हैं एक दो को कि ये गया था, ये काम हुआ। अगर एक दो को कोई बताते ही नहीं है घर में आते या जाते तो ठीक है, फिर तो ये धर्मशाला है, घर नहीं है। अगर एक दो की वैल्यू नहीं है तो आपको कहां सुख मिलेगा, आनंद मिलेगा। संबंध मीन्स हमें एक दो के आगे जीवन की किताब खुली रखनी है। तो बाबा मेरा मीन्स मुझे जीवन की हर बात बाबा को बतानी। तीन पुरुषार्थ बाबा कराते हैं ना, एक तो जन्म जन्मांतर के किए हुए पाप कर्मों को योग बल से भस्म करना है, क्योंकि उन पापों के कारण जो गलत संस्कार बने हुए हैं वही हमें फिर भूले कराते हैं। इसलिए बाबा कहते योग से रियलाइज करें कि ओरिजिनली हम शुद्ध आत्मा है, सत्य आत्मा है, पवित्र आत्मा है। ये जो गलत कर्म अज्ञानता में किए वो इस सत्य पवित्रता शांति सुख के स्वरूप को इमर्ज कर और बाबा से उन गुणों की शक्ति ले हमें वो संस्कार खत्म करने। अगर संस्कार नहीं बदलेंगे तो बार बार फिर भूलें होती रहेंगी और किए करे पुरुषार्थ जीरो हो जाएगा। दूसरा बाबा कहते हैं कि जब पावन बनना है तो नए पाप नहीं करने। अब नए पाप नहीं होने चाहिए क्योंकि ज्ञानी आत्मा बनकर भगवान की आज्ञा को जानते हुए भी हम अलबेले बनकर देह अभिमान के वश भूलें करते रहेंगे तो एक का 100 गुना हिसाब बनेगा और वो चुकाना बहुत भारी हो जाएगा। और तीसरी बात बाबा कहते हैं कि इस जन्म की पूरी जीवन कहानी सच्चाई से बाबा को लिख के दो, दी है आप सभी। हरेक को, क्योंकि संबंध माना क्या, साथी बनना माना क्या, और बाबा तो माफ भी कर देता है। जो भी भूल पापे गलतियां विकर्म हुए हैं, अब तो ज्ञान है ना, समझ सकते हो ना कि ज्ञान से पहले या ज्ञान के बाद कौन से कर्म पाप कहे जाएंगे, पता है ना। वे बचपन में थे, चोरी की थी, गंदा काम किया था, मारा मारी की, जो भी है, 5 विकारों के वश होकर जो ऐसे बड़े बड़े कर्म किए हो, बाबा कहते हैं आप खुद अपनी जीवन कहानी सच्चाई से बाबा को लिख के दो। तो बाबा कहते हैं ना कि आधा माफ हो जाएगा, भगवान कहे और हम करें तो आधा माफ हो जाएगा। और भगवान को कहना माना ये अटेंशन रहना कि अब वो फिर से ना। तो साथी बने, बाबा मेरा सिर्फ शब्दों से नहीं कहना है, जो भी मेरे होते हैं उनको हर बात में हम हिस्सा निकालते हैं ना। अच्छा खाना बनाएंगे तो भी उनके लिए रखेंगे, अच्छी चीज खुद के लिए लाएंगे तो उनके लिए भी लाएंगे, तो मेरापन महसूस होता है। हम उनके साथ बैठेंगे, दिल की बातें करेंगे, एक दो के मददगार बनेंगे, ये साथीपन है। सिर्फ बात नहीं करनी, प्रैक्टिकल करना है। मेरा स्थूल सूक्ष्म जो कुछ है, धन साधन जमीन जायदाद, जो भी मेरी कलाएं हैं, मेरा टाइम है, मेरा तन है, हर रीति से हमें मददगार बनना है। तो ऐसा बाबा को साथी बनाया है, बाबा को वारिस बनाओ कहते हैं ना बाबा खुद। ऐसा नहीं मेरा तो मेरा पर तेरा भी मेरा, ऐसे नहीं, सच्चा मेरा। वो शुरू में 69 में हम लोग थे तो एक भाई अपनी प्रॉपर्टी पूरा परिवार को दे के सेट करके फिर आया मधुबन की, बाबा मैं समर्पित होना चाहता। अब इसको समर्पित करना कहेंगे? बाबा भी तो पार्टनर है। अगर घर में आप 4 है, 5 है, पति पत्नी और 2 बच्चे हैं या 3 है या जो भी है आपके, तो बाबा भी है ना। तो हर बात में बाबा का हिस्सा है। तो सच्चा वारिस। बाबा तो सदा हमारे साथ है, और कर्म सिद्धांत अनुसार बाबा साक्षी भी होते है ना। देखो 2018 तक अव्यक्त पालना मिली, 2018 से बाबा साक्षी। बाबा के तरफ से जो देना था वो पूरा हो गया। अब आप कितना बाबा से लगन में मगन होते हैं, प्यार में फिदा होते हैं, वो आप मदद खींच सकते हैं। बाबा ने तो अपना पूरा खजाना दे दिया, तो हमें भी पूरा बाबा को साथी बनाकर चलना है। उनकी हर श्रीमत में कल्याण है, वो हमें पालन करनी है, तो हमें कभी भी अकेलापन भी नहीं लगेगा, खालीपन भी नहीं लगेगा, और हम निर्भय निश्चिंत होकर हर परिस्थिति को पार कर सकें। हमें भी आपस में जितना हो सके एक दो के प्रति शुभ भावना रखनी है, एक दो के जो भी रीति से यज्ञ के नियम अनुसार मददगार बन सकते हैं हमें एक दो को मदद करनी है। और बाबा ने अभी भी कहा ना कि ब्राह्मण बन गए माना न गाली देनी है न ग्लानी करनी है। हम जानते हैं हम सब नंबरवार वैरायटी है, हम ब्राह्मण ब्राह्मण की ग्लानी करे ये बहुत गलत है। आप मदद नहीं कर सकते हैं कोई बात नहीं, शुभ भावना रखिए, दिल से दुआ दीजिए, ये तो हम कर सकते हैं। एक दो में उमंग उत्साह भरे, पर किसी की ग्लानी करना, बाबा ने कहा ना ब्राह्मण माना वो गाली भी नहीं देगा, उनकी वाणी नहीं बिगड़ेगी कभी, और ग्लानी भी नहीं करेगा। लौकिक से निकल गए अब अलौकिक में आ गए तो यहां एक दो की ग्लानी करते हैं, तेरी मेरी करते हैं, आज हमारे सेंटर में ऐसा हुआ, आज उस सेंटर में ऐसा हुआ, आज मधुबन में ऐसा, क्यों हमें क्या मतलब, हमने संबंध बाबा से जोड़े हैं पुरुषार्थ करने के लिए, स्व कल्याण के लिए, विश्व कल्याण की सेवा करने के लिए। जो जितना भी कर रहा है आप और उमंग उत्साह भरिए, वो और अच्छा पुरुषार्थ करें। तो जहां ऐसे व्यवहार संस्कार दिखते हैं साक्षी हो जाओ और मन में शुभ भावना रखो। हमें मिलकर के संपूर्ण बनना है, हमें मिलकर के बाबा का विश्व कल्याण का कार्य संपन्न करना, ये दो हमारी जिम्मेवारी, हमें उस पर अधिक सोचना है। हर एक अपनी कैपेसिटी अनुसार पुरुषार्थ करेंगे, अपनी कैपेसिटी अनुसार सेवा करें, पर हम उसमें क्यों जाएं? ये सेवा नहीं करते हैं, ये देखो आए नहीं, ये ऐसे हैं वैसे हैं, नहीं, हम जितनी कर सकते हैं जिगरी दिल से करें। बाबा ने कहा है समय पर निरसंकल्प होकर एक धक से जो मददगार बनते हैं उनको अंत तक मदद करने के लिए बाप बंधा हुआ है, ये बाबा ने कहा है। पर ये तीन शर्त, समय पर, जब यज्ञ को यही समय है ना संगम का, जब भगवान को हमारी सेवा की आवश्यकता है। और निर्संकल्प, कहीं तो सहयोग भी एक दो को पूछ के करते हैं, तुम कितना कर रहे हो, मैं क्यों भाई, उनकी धन की शक्ति अलग है, आपकी अलग है, आप उनसे पूछ के क्यों करते हो, बाबा आपका अपना नहीं है क्या जो एक दो को पूछ के करते। निर्संकल्प होकर जो आपको देना है, यहां कोई आपको कह नहीं रहा है कि आपको इतना ही करना है, और कहता भी हो तो भी आप अपनी वास्तविकता देख के अपने दिल से करिए। दूसरे को बताना माना परसेंटेज कम हो गया, क्योंकि आपका परसेंटेज उसको थोड़ा चला गया, उनके कहने पर किया ना, तो आपका कम हो गया। क्यों, आपकी अपनी लगन नहीं है बाबा से? इसका मतलब तो ये हुआ कि इस पर आप आधारित है। आपको अपनी धन की कैपेसिटी पता है, तन की कैपेसिटी पता है, पर जो कुछ करिए निर्संकल्प हो। बाबा ने कहा ना, देने का भी संकल्प नहीं आना चाहिए, क्योंकि बाबा हमें दे रहा है, बाबा हमें सत्य ज्ञान देते हैं, श्रीमत देते हैं, श्रीमत पर हम चलकर सत कर्म करते हैं, उसी से हमारे भंडारे भरते हैं। और एक धक से, सोच सोच के नहीं, अभी दिवाली पर तो मदद किया था, अभी फिर 18 जनवरी आ गया, अभी फिर ऐसा हम क्यों सोचते, हमने भगवान को क्या समझा, इतने हल्के विचार तो आने ही नहीं चाहिए। भले 10 बार कहा जाए, परंतु आपको जब करना है तब करिए, दिल से करिए। आप माना हम सब भी आ जाते हैं, हमारे को भी ऐसे ही चलते हैं, तो 100% जमा। हमने सेंटर में माइक सेट लाके दिया, कुछ दिनों के बाद वो दिख नहीं रहा है सेंटर में, तो देने वाले सोचते रहते, हमने दीदी को माइक सेट दिया था, दीदी ने कहां कर दिया, शायद बेच दिया है दीदी। माना जब आप इतना सोच के यज्ञ में सहयोग करते हैं, तो क्यों हम लोग नहीं सोचते, हमारे में विवेक नहीं कि यज्ञ में जो आता है देने वाले भगवान को देते हैं, मुझे नहीं देते हैं। तो भगवान को दिया हुआ धन साधन मुझे वेस्ट नहीं करना चाहिए, नहीं तो मेरा हिसाब माइनस हो जाए। इसमें आपको, मुझे या भगवान को, इन बातों हमें किसी को जाने की जरूरत ही नहीं है। ड्रामा इतना एक्यूरेट है, कर्म सिद्धांत इतना एक्यूरेट है कि अपने आप हिसाब बनता ही। आपने दिया पर अभी तक पकड़ के रखा, मैंने जो दिया था वो कहाँ गया, मीन्स आपका जमा हुआ ही नहीं, क्योंकि आपने पकड़ के रखा। देने के बावजूद भी भाग्य नहीं बनेगा, क्योंकि हम संकल्प चलाते। तो ये कर्म की प्रैक्टिकल, इसलिए मैं बार बार कह रही हूं कि बाबा के साथ प्रैक्टिकल हमारा साथीपन हो, फिर आपको कोई चिंता नहीं, कोई मुंझ नहीं, अपने आप बाबा ही हमें गाइड करता है। वो दे रहा है पर मुझे महसूस क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि मेरे कर्मिक अकाउंट की दीवार बीच में है। अपने आप धीरज रखेंगे, हिम्मत रखेंगे और निर्संकल्प होके बाबा के श्रीमत पर चलेंगे, वो कर्मिक पर्दा खिसक जाएगा, अपने आप हमें मदद की महसूसता होगी। तो ये साथीपन, और जहां अन्य बातें हैं, ड्रामा के सिंस है, वहां साक्षी। ओम शांति।
Hey.